प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 20 अक्टूबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। मित्रों इसी के साथ ही विशेष रूप से स्वागत है उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं संत राम मीना दिल्ली से, शिवम यादव सुल्तानपुर से, विकास सिंह मेरठ से और रजनीश चेन्नई से। तो संत राम, शिवम, विकास और रजनीश आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आपके दिमाग में यदि जरा सी भी ऐसी बात आ रही हो कि अभी फरवरी के बहुत दिन बाकी हैं तो प्लीज उसे ड्रॉप कर दें, बहुत दिन बाकी नहीं है। ये समझिए कि फरवरी का महीना भी दस्तक दे रहा है और बहुत जल्दी वह वक्त आएगा जब आपको अपने किवाड़ खोलने पड़ेंगे। तो मित्रों आप सभी का स्वागत है। मेरे पास एक मेल है जिसमें एक स्टूडेंट ने जानना चाहा है जो अभी अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं कि सर उसके लिए हमें क्या तैयारी करके आनी पड़ेगी। मैं आप सभी उन स्टूडेंट्स को जो अक्टूबर की क्लास में आने वाले हैं मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स यहां जो आपको आना है वो कुछ बहुत विशेष तैयारी के साथ नहीं आना है। आप ऐसी मानसिक तैयारी के साथ केवल आइए कि पूरी तरह से आप अपने 15 दिन को क्लास को डिवोट कर सकें, एकेडमी को डिवोट कर सकें और सच पूछे तो मुझे डिवोट कर सके, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्लानिंग इस तरीके से कर रखी है कि मेरे ये 15 दिन पूरी तरह से 100% यहां आने वाले मेरे एक एक स्टूडेंट्स के लिए होंगे। इसलिए मित्रों ये जो क्लास है वो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की क्लास नहीं है, डिफरेंट तरह की क्लास है। आपको अपने साथ केवल एक नोटबुक और एक पेन लेकर आना है, बस दैट्स ऑल। हाँ आप पढ़ने के लिए अगर अपने साथ कोई और पुस्तक लाना चाहें तो वह आपकी च्वाइस है, स्वागत है, आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन एकेडमी का अलग से कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि आप यही लेकर आए। हां लेकिन ये जरूर है कि आपको एक अलग तरह की मानसिक तैयारी के साथ आना है। फ्रेंड्स आप अभी तक इतने कॉलेजेस में गए होंगे, स्कूल्स में गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको मानसिक तैयारी के बारे में आगाह किया हो। मैं आगाह कर रहा हूं, आप जितनी अच्छी मानसिक तैयारी के साथ आएंगे डेफिनेटली आप उतना ही अधिक यहां से लेकर जा सकेंगे। और मित्रों उस मानसिक तैयारी के और क्या क्या हिस्से होंगे वो हम यहां जब आप क्लास में आएंगे और क्लास का जो पहला ही सत्र होगा जिसे आप उद्घाटन सत्र कह सकते हैं लेकिन उस पर औपचारिक तरीके का उद्घाटन यहां नहीं होता है, उसमें फिर हम लोग इन बातों की चर्चा करेंगे कि आपको कैसे अपने आप को इसके लिए और अधिक तैयार करना है। दोस्तों मैंने अभी कहा कि आपको केवल एक नोटबुक और पेन लेकर आना है और सच पूछे तो अगर आप वो भी नहीं लेकर आना चाहें तो एकेडमी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां मैं आपको लिखने के लिए एनकरेज नहीं करता हूं, बिल्कुल एनकरेज नहीं करता हूं। उसका कारण यह है कि यहां क्लासेस में जितने भी आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, जितनी भी बातें बताई जाएंगी, उन सब के प्रेजेंटेशन वाले नोट्स यानी कि पॉइंट वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और वो नोट्स लगभग लगभग इस तरीके के बनाए गए हैं कि जैसे ही आप उसे देखेंगे आपको क्लास में जो बातें भी बताई गई हैं ज्यादा से ज्यादा स्मरण हो जाएं, उसका उद्देश्य ही यही है। इसलिए ज्यादा बातें नोट करने के लिए है नहीं और उसका कारण भी है। कारण यह है कि जब आप किसी को सुनने के साथ साथ अपने दिमाग को नोट करने में भी डिवाइड कर देते हैं तो मान करके चलिए कि फिर सुनने का काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सब इस क्लास में सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने। आपने देखा है कि जब गुरु दीक्षा देते हैं धार्मिक गुरु तो कान में धीरे से फुसफुसाते हैं। पता नहीं, मैंने कभी इस तरह की दीक्षा ली नहीं है, जो दीक्षा लेते हैं उन्हें कुछ सुनाई पड़ता भी है या नहीं, वो केवल फुसफुसाते हैं। कहा जाता है कि उनके फुसफुसाने का मतलब भी ये होता है कि वो इतने धीरे से बोले कि आपके शरीर का रोम रोम उसे सुनने के लिए सतर्क हो जाए और वो आवाज आपके अंदर गूंजने लगे। मित्रों, मैं भी यही चाहूंगा कि ये उस तरह की धार्मिक दीक्षा तो नहीं है, लेकिन आपकी एक एक इंद्रिय, आपकी एक एक एक्टिविटीज पूरी तरह से इस क्लास को समर्पित हो। यहां तक कि जब क्लास खत्म हो और आप सब जाएं अपने कमरों में, लौटें अपने हॉस्टल में, अपने होटल में लौटें, तो वहां भी जब बात करें तो क्लास के बारे में ही बात करें। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा संयोग था, एक सुखद संयोग था कि क्लास शुरू होनी है और उससे 6 दिन पहले आपको मैंने एक आर्टिकल प्रोवाइड किया है सुनने की कला के ऊपर। मैंने आप लोगों से कल रिक्वेस्ट किया था कि आप सब इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, केवल वही नहीं जो क्लास में आ रहे हैं, बल्कि वे भी जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं और वे भी जो इस ऑडियो को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अंततः सुनने का काम तो वो करते ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस बात पर गौर किया होगा और इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और पढ़ने के साथ ही साथ अपने ऊपर इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से अप्लाई भी किया होगा कि मुझसे कहां कहां चूक हो रही है, मैं कहां कहां गलतियां कर जाता हूं सुनने में। और याद रखिए कि जब सुनने में गलती होगी तो समझने में कहीं भी सही नहीं हो सकती, और जब समझने में ही सही नहीं है तो फिर आप ये बताइए कि जब आप उसी बात को लिखेंगे या किसी को बोलकर ही बताएंगे तो वो सही कैसे हो सकता है। यानी कि जो सोर्स है सुनना, लिसनिंग, अगर वही गड़बड़ है तो वो फिर गड़बड़ी आखिरी तक बनी रहेगी, उसके सुधरने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास है नहीं। मित्रों, इस सुनने के बारे में मैंने बहुत बहुत कुछ सोचा है, बहुत अनुभव किया है और इस पर प्रैक्टिकल भी किए हैं। बड़ी अद्भुत अद्भुत चीजें इसमें उभर करके आती हैं। मेरा मकसद अभी उन बातों की चर्चा करना नहीं है, लेकिन मैंने कल आप लोगों से वायदा किया था कि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ें, इसके बाद हम लोग इस पर हो सकेगा तो थोड़ी सी बात करेंगे। और आज मैं सच पूछिए तो अपने इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में इसी पर थोड़ी सी और कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। मित्रों, सुनने के मामले में दो सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक संकट होते हैं जो इससे भी ज्यादा गहरे होते हैं, जो लेख में आपने पढ़े हैं, जो बातें पढ़ी हैं उससे भी ज्यादा गहरे होते हैं, और उसको सामान्य तौर पर हम पकड़ नहीं पाते। चाहे मेरा आप ऑडियो सुन रहे हो, चाहे आप यहां क्लास में आकर के लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर मित्रों इतनी बड़ी क्लास होती है, 6-6, 6.5 घंटे की क्लास होती है 1.5-1.5 घंटे के गैप के बाद, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है और आत्मसंतोष है कि इस क्लास को आप लोगों का इतना जबरदस्त सहयोग मिलता है कि क्लास के दौरान अगर छोटा सा भी कांच का टुकड़ा गिरा दिया जाए तो उसकी आवाज पूरी क्लास सुन सकती है। आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, यह सुनने की पहली स्टेज है, यह तो होनी ही चाहिए। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दो संकट हम उस समय भी सामना करते हैं जब हम बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम वही सुन रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। याद रखिए कि हम वही नहीं सुनते हैं जो सुनाया जा रहा है, हम वो सुनते हैं जो हम चाह रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में सुनने के दौरान बड़े सूक्ष्म तौर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक तरह का इंटरप्रिटेशन चलता रहता है। अब ये कहा जाएगा, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको इस तरीके से कहा जाना चाहिए, यानी कि हम एक अपने दिमाग में फ्रेम बना रहे हैं कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, और जब उस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर फिर हमारा मन जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए जो हम कल्पना कर रहे हैं उधर चला जाता है। आप निर्द्वंद भाव से आइए, ऑडियो को भी सुनते हैं तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि आज ये सुनाया जाएगा और मुझे इस बात का उत्तर चाहिए। आपको तो जो दिया जा रहा है उस पर केंद्रित कीजिए और उसमें से फिर आपको जो चाहिए वो आप निकाल लीजिए, लेकिन इसको खुला छोड़िए। दूसरी बात ये होती है मित्रों कि इस पूरे सुनने की प्रक्रिया के दौरान सच ये है कि हम अपने आप को ही सुन रहे होते हैं। एक वर्ड है, एक शब्द है मौन। कहा जाता है कि मौन की भाषा सबसे सबसे प्रभावशाली भाषा होती है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति मौन होता है तो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। मौन की बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। इस मौन में जो शब्द है, अगर इनकी मात्राओं को निकाल दें, ओ की मात्रा को निकाल दें, तो जो बच जाता है वह होता है मन। तो मौन का संबंध ध्वनि से नहीं है। अगर मैं आवाज अपने मुंह से नहीं निकाल रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैं मौन हूं। हो सकता है कि मेरा मन उससे ज्यादा उद्वेलित हो, अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा हूं, मैं चीख रहा हूं, मैं चिड़चिड़ा रहा हूं, मैं गुस्से में भर करके किसी को भी डांट रहा हूं, मैं अंदर से पता नहीं कितना उद्वेलित हूं, कितना हल्ला गुल्ला मेरे अंदर, कितना शोर मेरे अंदर मचा हुआ है, लेकिन बाहर से मैं मौन हूं, बाहर से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इसीलिए हमारे यहां शब्द कहा गया मौन। नहीं, आप अंदर से कितने शांत हैं, अंदर से कितने शब्द रहित हैं, अंदर से कितने ध्वनि रहित हैं, अंदर से कितने विचार रहित हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस सीमा तक मौन हैं। या हो सकता है कि मैं बाहर से तो बोल रहा हूं लेकिन अंदर से मौन हूं। तो बोलने का संबंध मौन से नहीं है, मौन का संबंध मन से है। तो इसीलिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम हमेशा खुद को ही सुनते रहते हैं, फुर्सती नहीं मिलती हमको। हम अपने आप से सोचिए ना कि कितना बतियाते रहते हैं, रात दिन बतियाते रहते हैं। कुछ लोग तो सोने के बाद भी बतियाते रहते हैं, जिसको आप कहते हैं बड़बड़ाना। हम शांत हैं, क्लास में बैठे हुए हैं और हम लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग लगातार अपनी चीजों के बारे में सोच रहा है। आज दूसरा दिन हो गया, आज क्या पढ़ाया जाएगा, अच्छा आज ये पढ़ाया जाना चाहिए, आज का तो जो ब्रेकफास्ट था यार बड़ा जोरदार था, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, देखते हैं कि अब लंच में क्या मिलेगा। इस तरह की ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और हमारा दिमाग जिन बातों को चलाता रहता है हम उसी को सुनते रहते हैं। इसीलिए मित्रों, जो मनोवैज्ञानिक जो चुनौती होती है सुनने के बारे में, जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये कि हम अपने को ही सुनते रहते हैं। तो मित्रों, मैंने दो चुनौतियों के बारे में आपसे बातें की हैं, सुनने की दो जो चुनौतियां हैं। पहली तो बात ये है कि हम जो भी सुनते हैं वो वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और दूसरा यह है कि हम खुद को ही सुनते हैं, क्योंकि आदमी खुद को तो सुनना चाहता ही है। दोस्तों, आप इन दोनों ही मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का जितनी मजबूती के साथ सामना कर पाएंगे, आप देखेंगे कि सुनने का काम उतना परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। और देयर इज नो लिमिट ऑफ इट, इसकी कोई सीमा नहीं है। परफेक्शन के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि नहीं मेरे साथ तो ये हो रहा है, जो हो रहा है होने दीजिए। और जब आप ये समझने लगेंगे कि ऐसा हो रहा है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप इस तरह का होना कम हो जाएगा, आपको करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर चोरी करने वालों को या अपराध करने वालों को ये मालूम हो जाए कि पास में ही थाना है या वहां रात भर चौकीदार या पुलिस की गश्त होती रहती है, तो वो चौकीदार, वो अपराधी, वो चोर अपने आप सतर्क हो जाते हैं, फिर वहां जाते नहीं है, उनका मुकाबला करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो आते ही नहीं है। इसलिए जैसे ही इन सब बातों को ये पता लग जाएगा कि नहीं आप सतर्क हैं, आप पहचान जाते हैं उनको, आप भांप जाते हैं, वो आपके यहां विजिट करना कम कर देंगे। और जब विजिट करना कम कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी समस्याएं ऑटोमेटिक तरीके से धीरे 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 कम होती चली जाएंगी, लेकिन खत्म कभी नहीं होंगी। खत्म करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि अगर खत्म करने के चक्कर में पड़े तो याद रखिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हमारा ब्रेन है तब तक इस तरह की कुछ ना कुछ खुराफातें तो होती रहेंगी। हम केवल ये कर सकते हैं कि उसे मिनिमाइज करें। तो फ्रेंड्स, ये लाइफ मैनेजमेंट में कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मैं आता हूं, जैसा कि हमेशा रोजाना ही होता है, AIR न्यूज पर। दोस्तों, न्यूज आप लोगों ने सुनी ही है और उसमें आपने देखा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात वैसी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हमेशा ही होता है ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं की जो तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगती हैं, हालांकि बहुत विस्तार से जाने की जरूरत उनकी नहीं है क्योंकि इनके बारे में हम लोग पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। लगभग आप कह लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से जो समाचार चल रहे हैं उन्हीं का ही एक प्रकार का ये एक्सटेंशन है, उसी का एक विस्तार विस्तृत रूप है। वही चीजें अलग अलग तरीके से हमारे सामने रोजाना आ रही हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा कि जब ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहली बार समाज में जो असहिष्णुता की स्थिति है या जो इस तरह के तनाव की स्थितियां बन रही हैं उनके ऊपर जब उसके ऊपर खासकर जब एआईआर न्यूज की हेडलाइन बनी जिसमें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, फिर प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति जी को कोट करते हुए अपनी बात कही थी, और जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो याद रखिए कि वो स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे देश की सरकार कह रही है, उन शब्दों को आप भाषण वाले शब्दों से जोड़कर मत देखिएगा। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने वो बात कही थी इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसे ऑल इंडिया रेडियो ने अपने हेडलाइन का फर्स्ट न्यूज बनाया था। और आपने मार्क किया होगा कि इसके बाद से लगभग रोजाना के एआईआर न्यूज में कोई ऐसी घटना जो इससे जुड़ी हुई होती है उसका उल्लेख आ जाता है। यह होता है आपको सिविल सर्विस के लिए अपने महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं उनके चयन का कई आधारों में से एक आधार, कि कौन सा टॉपिक इस बार पूछा जा सकता है, किसकी अधिक संभावना है। देखिए, गारंटी तो कोई भी किसी भी बात की नहीं दी जा सकती, लेकिन संभावनाएं बताई जा सकती हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि कल के एआईआर न्यूज में फिर से दो तीन घटनाओं की चर्चा है। अगर ये पहले इतनी बड़ी बातें नहीं हुई होती, जैसे कि दुनिया भर की जो दूसरी घटनाएं घट गई जिससे ये सिम्टम्स पता लग रहे हैं कि समाज में कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि असहिष्णुता बढ़ रही है, समाज में तनाव बढ़ रहा है, अगर नहीं हुई होती तो फिर ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, शायद खत्म हो जाती। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट की बात होती है तो वो खत्म होने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि एक तो क्रिकेट जो हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा खेल है, किसी ने सही मायने में कहा था कि हिंदुस्तान में तीन सी सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उसमें एक है क्रिकेट, दूसरा है सिनेमा और तीसरा मुझे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, कि ये तीन सी जो हैं वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी चीजें हैं। आपने न्यूज में सुना कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के प्रस्तावों पर बातचीत करने के लिए जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं शहरयार जी वो बॉम्बे आए हुए थे, और वो हमारे यहां जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं मनोहर जी उनके साथ वो शशांक जी के साथ में बातचीत करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वहां कुछ लोग घुस गए और उन्होंने उसमें बाधा डाली और फलस्वरूप वो मैच की जो बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई। ये एक घटना थी। आप देख रहे हैं कि खासकर महाराष्ट्र में कभी शिवसेना, अभी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वो हिंदू सेना के लोग हैं, वो पाकिस्तान को लेकर के बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं। उनको ऐसा लगता है कि चूंकि पाकिस्तान हमारे यहां के लोगों को के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो हमें भी उनके यहां के लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। उनकी अपनी थिंकिंग है, उसे सहमत हुआ जा सकता है और नो डाउट की असहमत भी हुआ जा सकता है, और यही डेमोक्रेसी है। इसके बाद फिर आपने एक दूसरी घटना देखी कि जम्मू कश्मीर के जो एक विधायक एमएलए जो हैं उनके मुंह पर कालिक पोती गई, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अपने यहां एक पार्टी दी थी, बीफ की पार्टी दी थी, उसको लेकर के वहां के विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। ये दो घटनाएं हुई हैं और दोनों घटनाओं की चर्चा हमारे आकाशवाणी के न्यूज में थी। इसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के इसी के संदर्भ में फिर राष्ट्रपति जी की भी राष्ट्रपति जी का भी स्टेटमेंट आया कि जिन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि क्या ऐसा हमारा समाज कहीं असहिष्णु समाज तो नहीं हो रहा है, समाज को असहिष्णु होने से बचाना है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। तो अब आप देखते हैं कि ये तीन घटनाएं जो अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं वो न्यूज के एक ही सिक्वेंस में थी और उसकी हेडलाइन भारत पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर के थी, और एक बढ़ती हुई असहिष्णुता की तरफ ये संकेत कर रहा है। मित्रों, ये घटनाएं आपस में इंडिपेंडेंटली आपस में तो महत्व रखती हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई बहुत कोट करने वाली नहीं है जिन्हें आप अलग से लेकर के तैयारी करें, लेकिन इनको कुल मिलाकर के एक जो असहिष्णुता का जो टॉपिक बन रहा है वो निश्चित रूप से आपके सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बारे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए और जो नए तथ्य मिले, नई स्टडीज मिले, नए स्टेटमेंट मिले, नई दृष्टि मिले, कोई मौलिक विचार मिले तो उन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए, और अपनी तरफ से भी अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो उसे भी जैसे ही आप सोचें नोट कर लें, अदरवाइज वो चीजें फिर बाद में गायब हो जाती हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो दाल के उत्पादन को लेकर खेती, और आप देख रहे हैं कि पिछले तीन चार दिनों से लगातार हम लोग भी दाल के बारे में बातें कर रहे हैं, अखबारों में भी दाल के बारे में काफी बातें हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सिचुएशन बन रही खासकर पल्सेस को लेकर के और स्पेशली अरहर की दाल को लेकर के, तुअर की दाल जिसे कुछ लोग तुअर भी कहते हैं, उस दाल को लेकर के, तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो भारत का जो एक के जो एग्रीकल्चर सिनेरियो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं दाल पर न चला जाए। और ऐसा होता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी इस साल की अभी जो वर्तमान है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो तुअर दाल है वो केवल दाल नहीं है कि जिसे चावल के साथ मिलाकर के खाया जाता है या रोटी के साथ खाया जाता है, बल्कि वो एक प्रोटीन का बहुत ही बड़ा सोर्स भी है। इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कहां से समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में मैंने कुछ आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। मित्रों, आज फिर से मैं दो आपको एडिटोरियल कमेंट्स इसके लिए, दो तीन बल्कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एडिटोरियल कमेंट है जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये दिया है कि जैसे ही किसानों को, इस साल के किसानों को ये पता लगा कि इस बार मानसून कम होने वाला है, वैसे ही किसानों ने जो धान की खेती करते थे अपने उसको शिफ्ट किया और वो पल्सेस की तरफ चले गए, और लगभग जो दालों का जो खेती होती थी उसका जो क्षेत्रफल था वो 12% बढ़ गया क्योंकि वो दालों की तरफ चले गए। और हम लोग बात कर चुके हैं कि दालों के उत्पादन के लिए कम बारिश की जरूरत होती है, कम वर्षा की जरूरत होती है। तो इसको उठाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एक बहुत अच्छा साइन है, साइन इस बात का है कि अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो वो दालों के उत्पादन से कोई परहेज करने वाले लोगों में नहीं है, वो दालों का उत्पादन करेंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन दालों के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, इसके बावजूद दाल की सप्लाई और दाल का उत्पादन कह लीजिए और उसकी जो मांग है उसके बीच में काफी गैप है। जो न्यूज में ही आपने सुना, अगर हम मोटे तौर पर उसे चेंज कर दें, तो हमारे यहां जो दाल की पर ईयर जो खपत है जिसको आप डिमांड कहेंगे वो लगभग 23 लाख मिलियन टन है, 23 लाख मिलियन टन, और जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 17 और 18 लाख मिलियन टन के बीच में है। मतलब जो गैप है वो 6 से 7 लाख मिलियन टन का है, 5 से 6 लाख मिलियन टन का है। तो 5 से 6 लाख मिलियन टन बहुत मायने रखता है। अब आप देख रहे हैं कि अभी हम कितना मंगा रहे हैं बाहर से दाल, अभी जो रेट जो थोड़े से कम हुए हैं, हम हजारों टन में मंगा रहे हैं, इतने हजार टन, 6000 टन, 2000 टन, इस तरह से हम मंगा रहे हैं। और हमारे यहां जो अंतर आ रहा है दोनों में उसमें आ रहा है लगभग 5 से 6 लाख मिलियन टन का। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से किसान प्रोत्साहित होंगे क्योंकि उनकी चीजें बिकेंगी। तो उसके लिए कुछ इन्होंने उपाय सुझाए हैं, बहुत से उपायों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इसमें एक और आपको जो नया पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा नेफेड का। जो नेफेड एक सरकारी संस्था है मित्रों, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो दालों के बारे में उपाय करे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि नेफेड अपने आप में एक तरीके से इस क्षेत्र में परफॉर्म करने के लिए असफल रही है, न तो वो दालों का उस तरह से स्टॉक कर पा रही है और न ही वो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उस तरह का वातावरण बना पा रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो नेफेड को फिर से रिस्ट्रक्चर्ड करे, उसके काम को ज्यादा उपयोगी बनाए या फिर और कुछ इस तरह के स्टेप्स ले। तो दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कमेंट है, एडिटोरियल कमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल भी है। बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल है वो सुबीर गोकर्ण जी का है। मित्रों, आप लोग जो मेरे द्वारा दिए गए प्रेस क्लिपिंग्स को पढ़ते हैं वो सुबीर गोकर्ण जी के नाम से बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे। वो काफी अच्छा लिखते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर के लिखते हैं, और उनकी भाषा भी, वो लिखते तो अंग्रेजी में है लेकिन उनकी भाषा भी ऐसी होती है कि जिसको हिंदी में अच्छा अनुवाद अच्छे तरीके से अनुदित किया जा सकता है, तो उसका फायदा फिर आप जैसे हिंदी में जो स्टूडेंट जानने वाले हैं उनको मिल जाता है। इसमें उन्होंने एक दो नई चीजें बताई है दोस्तों। वो एक बात तो उन्होंने ये बताई है कि पिछले दिनों कुछ सालों से भारत में तुअर दाल की स्पेशली मांग बढ़ी है। और उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि पिछले कुछ सालों से एक तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनमें उनकी आय में वृद्धि हुई है और आय में वृद्धि होने के कारण वो खर्च ज्यादा करने लगे हैं और दूसरा ये कि लोगों में हेल्थ की कॉन्शियस बहुत आई है स्वास्थ्य संबंधी और तुअर दाल ही ऐसी होती है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इन्होंने कहा कि इसकी वजह से प्रोटीन और सब्जियों पर लोग ज्यादा खर्च करने लगे वेजिटेबल्स पर स्वास्थ्य के लिहाज से, तो नतीजा यह हुआ कि जो तुअर दाल है उसकी मांग बढ़ गई है। तो ये एक उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुअर दाल की जगह पर हम दूसरे दाल को लाना भी चाहें, जैसे चने का दाल का इन्होंने उदाहरण दिया, तो बोले वो उतना कामयाब नहीं रहेगा क्योंकि उनमें प्रोटीन उतना नहीं है जितना कि तुअर की दाल में है। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि फिर भी इसके विकल्पों पर भी सोचा जाना चाहिए। तो इन्होंने ये उपाय मतलब ये एक नया फैक्ट दिया है दोस्तों। और बाद और बाकी जो इन्होंने जो बातें लिखी हैं, चूंकि हम लोग इससे पहले उन बातों की चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं उसे यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। फ्रेंड्स, जो तीसरी खबर थी वो थी, आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर के दो स्टेटमेंट हैं, बड़े खूबसूरत स्टेटमेंट हैं। पहला, उन्होंने कहा कि बैंकों के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, स्पेसलेस और पेपरलेस। अब आप देखते हैं कि ये जो कुछ योजनाएं चली हैं, जैसे मुद्रा बैंक की योजना है और आपके पेमेंट बैंक की योजनाएं हैं, ये तो बहुत कुछ, खासकर पेमेंट बैंक तो पूरी तरह से आपके मोबाइल पर ही चलने वाली योजना है। आपको कोई दफ्तर मिलेगा ही नहीं, मोबाइल पर ही जमा कर लीजिए, सब चीज होता रहेगा। तो पेपरलेस होते जा रहे हैं, बैंकों का स्वरूप कितना ज्यादा बदल गया। आप देख रहे हैं कि आप एटीएम से पैसा निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली आप पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन ही करा रहे हैं तो आपको ड्राफ्ट बनाने का चक्कर नहीं है, चेक काटने का चक्कर नहीं है। आप बैंक में जमा करते हैं, दो घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर वो एकेडमी के पास पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बैंकों की कार्य प्रणाली में कितना जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। ये एक सोचने की बात है, एक अच्छा मौका है जब आप इसके लिए कुछ पॉइंट जुटा सकते हैं अपने दिमाग में। मित्रों, ऐसा करने से होता यह है कि आपका दिमाग सक्षम बनता है, मजबूत बनता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। उसी तरह से उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि गांव का आर्थिक परिदृश्य जो है ना वो बहुत बदल रहा है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है। मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को 500-700 शब्दों का एक निबंध तैयार कर लेना चाहिए। केवल इस पॉइंट पर ही भले ही आप सोचें कि भाई गांव का आर्थिक परिदृश्य कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है, और वो जो आर्थिक परिदृश्य है वो हमारे देश को आर्थिक शक्ति कैसे प्रदान कर रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। और इस पर मैं आपको पॉइंट्स नहीं दे रहा हूं, इस पर आप लोग खुद सोचें। इसके बाद जो एक बड़ी खबर थी दोस्तों, वो न्यायालय की अवमानना को लेकर के थी। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिनियम पारित किया था सरकार ने, उसको निरस्त कर दिया है। उसको लेकर के कल मैंने वित्त मंत्री जी के स्टेटमेंट की आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी और अब उस वित्त मंत्री जी के स्टेटमेंट को न्यायालय की अवमानना मानते हुए उनके खिलाफ एक समन जारी किया गया है। ये एक खबर है। इस खबर के साथ देखिए एक जो बात जुड़ती है वो जुड़ती है, निश्चित रूप से न्यायालय की अवमानना एक अपराध है अभी के हिसाब से। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या न्यायालय की किसी भी बात पर कोई बहस नहीं की जा सकती, कोई अपना मत नहीं दे सकता है? अवमानना की क्या डेफिनेशन होगी, या क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में न्यायालय पूरी तरह से निरंकुश हो सकता है? और इस शब्द का इस्तेमाल हमारे वित्त मंत्री जी ने किया भी था कि डेमोक्रेसी में कोई भी एक निरंकुश व्यक्ति नहीं हो सकता या संस्था नहीं हो सकती। तो इस तरह के कुछ सवाल दिमाग में उठ सकते हैं और सिविल सर्विस में पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, ये एक छोटी सी बात थी। और आखिरी छोटी सी जो खबर थी वो ये थी कि नेपाल के, आपको मालूम है कि डिप्टी पीएम भारत आए हुए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, हमारे विदेश मंत्री से भी इससे पहले मिले थे, आपस में बातचीत हुई है। और आज अखबार में छोटी सी खबर है कि जो नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो खासकर मधेशियों से, जो वहां के लोग हैं और जो अभी आंदोलन कर रहे हैं और नेपाल के संविधान को सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। तो कम से कम एक बातचीत का रास्ता निकला है, क्योंकि अभी भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों में जो खटास आई है उसका कारण केवल यही है कि वहां का जो संविधान बना है उसे वो मधेशियों के खिलाफ है, और जो मधेशिया हैं ये भारत से गए हुए लोग हैं या भारत के साथ इनके संबंध हैं या जो भी आप कह लीजिए, तो वो एक कारण है। तो देखिए शायद बातचीत से अगर कुछ सही हल निकल पाता है तो रिश्तों में फिर और गर्माहट आ जाएगी। हाँ मित्रों, AIR न्यूज के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। कुछ क्लिपिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी हैं, मित्रों दो एक क्लिपिंग्स की मैं स्पेशली चर्चा करना चाहूंगा, वो दैनिक भास्कर में छपा है, जो शशि थरूर जी हैं उनका एक आर्टिकल छपा है। जैसा कि अभी आपको मालूम ही है कि साहित्य एकेडमी के बहुत लगभग 30 लेखकों ने साहित्य एकेडमी द्वारा दिए गए सम्मान को लौटाया है, ये कहकर के कि देश में असहिष्णुता का माहौल बन रहा है, उसको लेकर के शशि थरूर जी ने लिखा है कि इस तरीके का विरोध कितना सही है कितना गलत है। मित्रों इसके बारे में मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है, शशि थरूर जी की राय अलग हो सकती है, जिन लेखकों ने लौटाए हैं उनकी राय अलग हो सकती है, सबकी राय अलग अलग हो सकती है और ये होना ही चाहिए। यही सही मायने में लोगों की अपनी सोचने समझने की क्षमता का प्रतीक है और यही विचारों की अभी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। आपको इसको इस लिहाज से पढ़ना है कि किस तरीके से बातें जब की जाती हैं तो कैसे कैसे तथ्य निकाले जाते हैं, कैसे कैसे तर्क निकाले जाते हैं, किस तरह से तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता है और खासकर अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये आपको ये जो लेख है स्पेशली एक एनालिसिस पावर डेवलप करने में आपकी काफी मदद करेगा। तो मित्रों इसी के साथ ही और तीन चार आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, या आप देख लीजिएगा, उनकी मैं यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैं आता हूं बिल्कुल अंतिम चरण पर। मित्रों मेरे पास चार दोस्तों के नाम आए हैं जो अक्टूबर की क्लास करने के लिए अभी भोपाल आने वाले हैं, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं, मैं उनके मोबाइल नंबर और नाम आपको बता रहा हूं। जो भी उस एरिया से आ रहे हों वो यदि दूसरे स्टूडेंट इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक नाम है अंकित कुमार का जो इलाहाबाद से आ रहे हैं, इन्होंने इलाहाबाद और कानपुर से आने वाले स्टूडेंट्स को कहा है कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अंकित कुमार का नंबर है 9696060809। दूसरे फ्रेंड हैं सुरेंद्र सिंह जो पानीपत से आ रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर है 8814028660। तीसरे दोस्त हैं दीपक कुमार जिन्होंने गाजीपुर और इलाहाबाद दोनों ही जगह के नाम दिए हैं, दीपक कुमार का मोबाइल नंबर है 9452903238। और चौथे दोस्त हैं प्रदीप कुमार पांडे जो बक्सर बिहार से आ रहे हैं, प्रदीप कुमार पांडे का मोबाइल नंबर है 9102324225। मित्रों इसके बाद मेरे पास एक मेल है रोहित गुप्ता का इलाहाबाद से, उन्होंने लिखा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड में उन्होंने आर्टिकल भेजा और वो छपा और उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित किया, शक्ति केसरी उनका नाम है उनका भी छपा और इससे उन दोनों उनको बेहद खुशी हुई। तो रोहित और शक्ति आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य में आप इससे भी बेहतर करें इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहित गुप्ता इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अभी अक्टूबर की क्लास में आ भी रहे हैं और शक्ति केसरी भी आ रहे हैं। मित्रों अब कुछ अन्य मित्रों के नाम जिन्होंने मेल लिखे हैं, उनके हैं सुनील मांझी गोलाघाट असम से, प्रद्युम्न मिश्रा मऊ उत्तर प्रदेश से, उपेंद्र गौतम बालाघाट मध्य प्रदेश से, प्रियंका पासवान भानु प्रताप वर्मा लखनऊ से और हर्षवर्धन सासाराम बिहार से। आप सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही उन सब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं लेकिन जिन्होंने मेल लिखे हैं। मित्रों आज जितने भी मेल आए हैं मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उसमें जो मैं अच्छा मेल जिसे कह सकता हूं वो सुनील मांझी का है जिन्होंने हिंदी में मेल लिखा है जबकि वो गोलाघाट असम के रहने वाले हैं। तो सुनील इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक विशेष सूचना है और यह सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अक्टूबर की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। फ्रेंड्स आप सभी के रजिस्टर्ड ईमेल पर एक सूचना भेजी गई है, बहुत डिटेल में सूचना है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि आपको कहां आपको उतर कर किस जगह पर जाना है, आपके होटल का नाम एड्रेस उसका टेलीफोन नंबर बकायदे दिया गया है और उसकी दूरी कहां से कितनी पड़ेगी उन सब का उल्लेख किया गया है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में भी बहुत साफ साफ तौर पर बताया गया है कि आपके नाश्ते की व्यवस्था कहां है, भोजन की व्यवस्था कहां है, रात के भोजन की व्यवस्था किसकी किसकी कहां होगी। एक स्थान है जहां के लिए व्यवस्था एकेडमी ने अलग से कराई है, और उसके लिए अलग से पेमेंट लिया गया है। तो ये सारी सूचनाएं बहुत डिटेल में उसमें दी गई हैं। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि प्लीज उस सूचना को बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, और यदि आपके दिमाग में कोई डाउट उठता है, कोई प्रश्न पैदा होता है, तो मेरी राय है कि आप फिर से उसे पढ़ें। आप देखेंगे कि जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने प्रश्न के उत्तर उसी सूचना में मिल जाएंगे। मित्रों, ये भी आपके ट्रेनिंग का ही हिस्सा है और आपको पहली बार शायद इस बात का पता लगेगा कि चीजों को हम पढ़ते हैं लेकिन जिस तरीके से जितने ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए उतने ध्यान से हम नहीं पढ़ते और बेवजह हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट होते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि वो जो सूचना दी गई है वो जल्दबाजी में पढ़ने की सूचना नहीं है। आपके रुकने का इंतजाम कहां किया गया है, आपके नाम के सामने होटल लिखा हुआ है, होटल के सामने होटल की पूरी लिस्ट में आपका नाम है, उसे देखें, उसका एड्रेस वहां नोट है, उनका टेलीफोन नंबर है और एड्रेस भी इस तरीके से लिखा गया है कि वहां आपको पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मित्रों, यही तो ट्रेनिंग का हिस्सा भी है कि आप किसी भी दिक्कत का सामना बड़े आराम से कर सकें, उसे सरल बना करके कर सकें और अपने ही स्तर पर कर सकें। तो प्लीज उस पर बहुत अधिक ध्यान दें।